ವವಹಾರು ಭೂದತ್ತೋ ಭೂದತ್ತೋ ದೇಶಿದೋದು ಶುದ್ಧನವೋ ಭೂದತ್ತಮಶ್ಚಿದೋ ಖಲು ಸಮ್ಮಾದಿಠಿ ಹವದಿ ಜೀವೋ ವ್ಯವಹಾರ ಅಭೂತಾರ್ಥ ಹೋತಾ ಹೈ अभूतार्थ का अर्थ ही व्यवहार है और भूतार्थ का अर्थ शुद्ध नहीं होता है। शुद्धने के बारे में पहले भी कहा गया है, अभी रत्नत्रय के समय पर शुद्धने का आश्रय लिया जाता है अथवा निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार या द्रव्य श्रुत केवली का कथन करके आए हैं। तो निश्चय श्रुत केवली जो होता है वह शुद्ध निश्चय की भूमिका में होता है। यहाँ पर शब्द शुद्ध निश्चय नहीं को ऐसा न कह करके उसका आश्रय जो लेता है, एक कथन का आश्रय और एक शुद्ध निश्चय का आश्रय, इसमें बहुत अंतर है। व्यवहार में भी शुद्ध निश्चय की जब हम व्याख्या करेंगे तो उस समय शुद्ध निश्चय का आश्रय नहीं लिया गया है, किंतु व्यवहार नहीं का आश्रय लेकर के शुद्ध निश्चय की व्याख्या की जा रही है। किंतु जिस समय वह शुद्ध निश्चय का आश्रय लेता है उस समय वह व्यवहार से छूट जाता है। व्यवहार की भूमिका कहाँ तक है, निश्चय की भूमिका कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, एक सप्ताह में लगभग हम सीख चुके हैं, सुन चुके हैं, उसके प्रयोग उदाहरण भी कुछ अवगत कर चुके हैं कि जब तक वह उपयोग को स्थिर नहीं करता है या उपयोग में दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रणाली रहती है तब तक वह अभूतार्थ व्यवहार वाला माना जाता है। क्योंकि आगे ये कहेंगे भूतार्थ के आश्रय लेने से अथवा शुद्ध निश्चय के आश्रय लेने से मुनि सभी दुख से मुक्ति पा जाता है। पहले की गाथा में कह करके आए निच्युद तो इस प्रकार उन्होंने कहा था। तो आत्मा की भावना और रत्नत्रय की भावना, रत्नत्रय की भावना के साथ उपयोग व्यवहार का सहारा लेकर के चलता है, क्योंकि अभेद रत्नत्रय के साथ आत्मा निश्चय एक ने का ही आधार लेकर के चलता है। यह जहां कहीं भी वो कथन आएगा वहां पर इसी ढंग से कथन करना, क्योंकि निश्चय का आश्रय लेने के उपरांत फिर किसी का आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और अचरेन कालेन कहते हैं कि वह सर्व दुख से मुक्त हो जाता है। इसलिए निश्चय का आश्रय का अर्थ निश्चय के कथन का आश्रय नहीं, किंतु निश्चय के विषय भूत जो निर्विकल्प समाधि थी या एकत्व विभक्त का सहारा था। एकत्व मैंने एकत्व है अभेद रत्नत्रय कैसा है, वह विभक्त रागादि रहित जो एकत्व है उसका आश्रय लेता है तो वह बहुत ही शीघ्र सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और वही सम्यक दृष्टि होता है। यह उत्तरार्ध में कहा जा रहा, भूतार्थ का आश्रय लेने वाला ही सम्यक दृष्टि होता है और अभूतार्थ का आश्रय लेने वाला, व्यवहार का आश्रय लेने वाला सम्यक दृष्टि नहीं होता। यह अर्थ तो स्पष्ट है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि भेद रत्नत्रय के साथ जो व्यवहार नहीं चलता है उसके साथ रत्नत्रय है ही नहीं, ये सिद्ध होगा। इसी रहस्य को खोलने के लिए पीठिका के बाद इन्होंने ये सारे सारे प्रकरण रखे, प्राय 7 तत्वों का व्याख्यान भिन्न भिन्न प्रकरणों में इन्होंने किया है। संवर है, निर्जरा है, आश्रव है, पुण्य और पाप है, बंध है, मोक्ष है, ये सारे सारे कथन इसी चौदह गाथा के बाद जो पीठिका को प्रांत किया उसमें स्पष्ट रूप से यत्र तत्र इसका व्याख्यान उन्होंने किया है। टीका ग्रंथों में भी इसका स्पष्ट रूपेण उल्लेख मिल जाता है कि यहां पर सम्यक दृष्टि कहने से निश्चय सम्यक दृष्टि को ग्रहण कर लेना और निश्चय सम्यक दृष्टि एक होता है तो उसके साथ रत्नत्रय तीनों ही हो जाते हैं। निश्चय विस्तार चारित्र भी होता है, निश्चय सम्यक ज्ञान भी हो जाता है। ऐसा कि किसी एक का सहारा लिया तो तीनों का सहारा हो जाता है, क्योंकि अभेद विवक्षा में ये तीनों ही आ जाते हैं। इसलिए यहां पर सम्यक दृष्टि कहने से भूतार्थ का आश्रय लेने वाला अथवा शुद्ध नयात्मक जो निर्विकल्प समाधि है उस समय जो सम्यक दर्शन होता है वह यहां पर विवक्षित है। सम्यक दर्शन तो महाराज ये की है, बाकी जो है चारित्र की विवक्षा लेकर के करो। तो आचार्य कहते हैं कि वह सम्यक दृष्टि ही मुक्त हो जाता है, तो सम्यक ज्ञान नहीं है क्या? वो उसके साथ आ ही जाता है। फिर सम्यक चारित्र नहीं होता तो सम्यक चारित्र उसके साथ रहता है। तो जो अभेद विवक्षा में एक का वर्णन करते हैं उसके साथ शेष दोनों भी उसमें गर्भित हो जाते हैं। टीकाकारों ने उसको पानकवत ऐसा उदाहरण दिया है। प्रथम दिन ही हमने ये कहा था पानक मैंने ठंडाई, पानक मैंने शरबत है। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें बहुत सारी चीजें मिली हैं और उसका एक पेय पदार्थ ऐसा नाम रख दिया, तो पेय पदार्थ करने से वहां पर प्रसंग में जल नहीं है, दूध नहीं है या और कोई भी रस नहीं है, किंतु पानक पेय पदार्थ बनाया गया है जिसमें और भी कुछ चीजें मिली रहती है, उसका नाम पेय कहा। तो दो तीन चीजें याद कर लो, तो उसमें जैसे कहा था कि बूरा भी है और बादाम भी है और सौंफ इलायची जो कुछ भी है वो भी है, काली मिर्च जो कुछ भी है रख दिया और पानी का घोल बना दिया। लेकिन तीनों एक 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 कटोरे में रखे हैं तो उस समय तो उनको क्या कहेंगे हम, ये बूरा है, ये काली मिर्च है, ये बादाम है, ये पानी है। तीनों को घोल दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे हम, ये तो पेय है, शरबत है, ठंडाई है, पानक है। तो पानक कहने से यहां पर तीनों जैसे समाविष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार यहां पर भूतार्थ का आश्रय लेने वाला शुद्ध नहीं होता और शुद्ध नहीं को ही यहां पर सम्यक दृष्टि ऐसा कहा। आगम पद्धति में इसको ध्यान कहा है, इसको ध्यान कहा है। आगम में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से मुक्ति होती है ऐसा न कह करके ध्यान से मुक्ति होती है ऐसा कहा। अब देखो केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो शुक्ल ध्यान से होता है। अब शुक्ल ध्यान में कहीं भी नहीं लिखा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। जयसिंह स्वामी ने एक स्थान पर क्या अन्य बहुत बार कहा है कि सर्वप्रथम एक शब्दार्थ होता है, एक नयार्थ होता है, एक मतार्थ होता है, एक आगमार्थ होता है और एक भावार्थ। भावार्थ लास्ट में है, भाव समझने चाहिए अपने को, ये सब झंझट है। ऐसा नहीं, भाव तक पहुंचने के लिए यही चार यात्राएं हैं। पहले सर्वप्रथम शब्द के ऊपर अधिकार रखना चाहिए, शब्द का मूल्य यहां पर ज्ञात होता है, शब्द का प्रसंग के अनुसार अर्थ निकाले जाता है। ये चार बिंदु इसलिए सामने रखे गए। पहले शब्दार्थ हो गया, कौन से नए की विवक्षा में यह शब्द का प्रयोग किया है यह आप ज्ञात। यहां पर तो सम्यक दर्शन कहा, सम्यक दर्शन तो कहा, लेकिन वह सम्यक दर्शन कौन सा, भूतार्थ। और वो भूतार्थ क्या है तो कहा जाता है शुद्ध नय, और वो शुद्ध नय निर्विकल्प दशा में हुआ करता। कभी कभी इन्हीं ग्रंथों के कलशा आदि के उल्लेख में ये कहा गया है कि व्यवहार से किसी एक नय का विषय रागी है तो किसी एक नय का विषय विरागी है, ये तो नय का पक्षपात है। आत्मा तो खलु चिच्च देव, खलु चिच्च देव, खलु चिच्च देव, ऐसे कम से कम भी पुनरावृत्ति को लेते हुए कभी किसी विवक्षा में बंधक है, किसी विवक्षा में अबंधक है, किसी विवक्षा में रागी है, किसी विवक्षा में अरागी है, किसी विवक्षा में संयमी है, किसी विवक्षा से असंयमी है, लेकिन वस्तुतः नयों से ऊपर उठ जाते हैं तो वहां पर चित्त मात्र आत्म तत्व उपलब्ध होता है। तो वह नयों के विकल्प आचार्यों ने कहा कि जितने भी शब्द हैं उतने ही नए हैं, और जितने ही नए हैं उतने ही मिथ्यावादी हैं, इसलिए उनको समझाने के लिए हमने ये प्रयोग किया। नहीं बिल्कुल, वो वाद वाद जब तक चलता रहेगा तब तक ये नए नए ज्ञान नहीं विकल्पा नया सम्यक नहीं भी होता है, लेकिन एकांत को लेकर के यदि चलेगा तो वह वादी प्रतिवादी के रूप में ही ग्रहित होगा, उसके माध्यम से उससे ऊपर उठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए निश्चय निश्चय नहीं है, मेरा निश्चय नहीं ऐसा जो कहता है वह भी अभी नीचे ही है, और व्यवहार नहीं कह करके भैया इसके बिना हमारे कोई शरण नहीं आ सका तो उसके लिए आगे कोई विकल्प नहीं, ये समझने के लिए है। अन्यत्र एक ब्रह्मवादी आते हैं, शब्दाद्वैतवादी आ जाते हैं, ज्ञानाद्वैतवादी आ जाते हैं, न्याय के ग्रंथों में इस प्रकार के वादी बहुत सारे मिल जाते हैं और सब जगह वाद विवाद चलता रहता है, खंडन मंडन चलता रहता है। उनके यहाँ एक ऐसा आ जाता है नीति। अब इसमें बहुत अर्थ गंभीर निकल जाता है, कोई वस्तु का कोई भी स्वभाव बता दिया नीति, अर्थ क्या है तो हम तो इसका अर्थ इतना निकलते हैं कि न इति यही अंत नहीं है, ये नहीं ऐसा नहीं, न इति यह अंत नहीं है तो और आगे बढ़ो। कोई व्यवहार कह देता नहीं थे, कोई निश्चय कह देता नहीं थे, कोई उभय कहता नहीं थे, कोई अनुभव कहता नहीं थे, है क्या इतना ही नहीं, सीधी सीधी बात, ये आत्मा है ये नहीं है, ये आत्मा है ये नहीं है, फिर क्या आत्मा है ये सब नहीं है, आत्मा क्या बताओ ना, इसको पहले छोड़ दो फिर बात बता दे। इसमें आत्मबुद्धि कर रहे हो इसलिए इतना हमारा पर्याप्त है कि इसको छोड़ दो, क्या क्या छोड़ूं, क्या क्या जोड़ा, क्या क्या जोड़ा बताओ, सही सही बताओ, जो जो जोड़ा है उसको छोड़ दो, जो जोड़ा है वो अपना नहीं, जो छोड़ा है वो अपना नहीं,
जब खाली हो जाओगे तो मिल जाएगा। खाली कैसे किया जाए तो ये बात अलग है, इसका तरीका पूछना चाहते तो हम बता देते। यदि खाली होना वस्तुतः चाहते हो, निश्चय है ये, बहुत कठिन हो जाता है, क्यों निर्णय है निश्चय चाहिए अपने को, हाँ चाहे चाहे तो क्यों लगाते हो फिर, चाहो चाहते तो हैं तो मत लगाओ, स्पष्ट कर दो बिल्कुल ना या हाँ कह दो ना, जब कभी भी उलझ जाता है तो हाँ या ना में उत्तर दीजिए। ये बहुत कठिन होता है, हाँ या ना? बहुत कठिन होता है। कौन सा सही है टिक मार दो, लेकिन ये ध्यान रखना गलत टिक मार दोगे तो एक नंबर और जाएगा, मिला यही नहीं नंबर और कैसे जाए, तो इसी को तो हम कहेंगे सोच विचार के लगाओ ये या तो ये, ऐसा नहीं निश्चित करके बता दो। जब ये रसवान है तो आत्मा रसवान नहीं, उसकी प्रति रुचि क्यों? जितने भी विकल्प हैं वो सारे के सारे इसी के कारण हैं। आत्मा में क्यों नहीं ठहरता, रास्ता नहीं मिलता है क्या? ठहरने के लिए कोई रास्ते की आवश्यकता नहीं, ध्यान रखो। गमन करने के लिए रास्ता आवश्यक है, गमन करना ही नहीं, जहां हो वहीं के वहीं ठहर जाओ, मिल जाएगी मंजिल, हां मिल जाएगी, वहीं ठहरना, लेकिन शरीर से ही नहीं ठहरना, मन से भी ठहरना, वचन से भी ठहरना और काय से भी ठहरना। ढाई द्वीप है हमारे पास, ढाई द्वीप में कहीं भी ठहर जाओ वहीं पर मुक्ति मिल जाएगी, ढाई द्वीप को छोड़कर कहीं मुक्ति है ही नहीं, मिल जाएगी, हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। जहां रुको वहीं पर अपना स्थान है, रुकना नहीं हो रहा तो बात अलग है, घूमो, घूम करके तो यहीं पर आना पड़ेगा, एक दिन रुकना पड़ेगा। तो यह निश्चय भूतार्थ है। आगम में सात नए आते हैं अथवा द्रव्यार्थिक को पर्यायार्थिक नए आते हैं, द्रव्यार्थिक नए के तीन चार भेद हैं, पर्यायार्थिक नए के तीन चार भेद हैं, ये सात हो जाते हैं। इनमें एक लास्ट में एवं भूत आया है, इस मेल खाता है इससे। भूतार्थ जैसा है अर्थ पदार्थ वैसा होना, ये भूतार्थ है। एवं भूत, जैसा उसका नाम रखा है वैसा ही उसका वर्तमान में कार्य हो रहा है। कभी कभी करता उसको नहीं, उसको तो समय भी रूढ़ नहीं कहेंगे, शब्द नहीं में अनेक उसके वाचक शब्द मिल जाते हैं, जैसे देव कहो, अमर कहो, सुर कहो आदि आदि, ये सब वो देव के वाचक हैं। लेकिन सही मायने में कब, जब उस रूप कार्य करता है तो वह देव है। जो वाहन चला रहा उसको हम ड्राइवर कहेंगे या चालक कहेंगे, ड्राइवर को बुलाओ, चालक को बुलाओ, कहां गए, सोया है, तो श्यालु कहलाएगा, वो श्यालु कहलाएगा। वो ड्राइवर कभी सोता नहीं, सोने वाला कभी ड्राइवर होता नहीं, व्यवहार में तो यही चलता है, तो चलने दो। लेकिन हम ड्राइवर उसी को बोलते हैं जिस समय वह ड्राइविंग करता है, जिस समय वह वाहन को चलाता है उसी समय हम उसको चालक कहेंगे, अन्यथा वह चालक नहीं है। तो निश्चय ने का आश्रय लिया तो वह भूतार्थ कहलाएगा, और भूतार्थ कहलाएगा उस समय वह सम्यक दृष्टि यानी वीतराग सम्यक दृष्टि वह होगा, निश्चय सम्यक दृष्टि वह होगा। ते भरतादय वस्तुवृत्त्या व्यवहार सम्यक दृष्टि न, ये व्यवहार सम्यक दृष्टि है, ते सराग सम्यक दृष्टि। जो जो भरतादि कहे हैं, भरतादिकार तो भरत है, राम है, पांडव है आदि आदि सब आ गए, वही भरत है जो आदिनाथ भगवान के सुपुत्र क्षायिक समय दृष्टि है, और क्षायिक समय दृष्टि को आपने व्यवहार कहा, व्यवहार को तो सराग कहा, और सराग तो वह वस्तुतः ऐसा है।
बिल्कुल, हम उसको निश्चय सम्यक दृष्टि बोलते हैं जिसके उपयोग में स्थिरता है। कुछ अंश में स्थिर, तो कुछ अंश का यहां पर खेल ही नहीं है, यहां पर अडिग रहना चाहिए। एवं भूत तो एवं भूत ही होना चाहिए, उसी समय उसको हम उस वाला कहेंगे, अन्यथा नहीं कह सकेंगे। वह सम्यक दृष्टि सातों भयों से मुक्त है, आगे कहा जाएगा, इसी में कहा जाएगा। पर चक्रवर्ती को सातों भयों से मुक्त मानते हो क्या? भय अपने आप में एक कषाय नहीं है, नौ कषाय है। उसका रूप, उसके रूप चार हैं। अनंतानुमंदी के साथ अलग है, अप्रत्याख्यान के साथ अलग है, प्रत्याख्यान के साथ अलग है, और संजलन के साथ अलग है। क्रोध के साथ अलग है, मान के साथ अलग है, माया के साथ अलग है, लोभ के साथ अलग है। वह भय प्रकृति 16 प्रकार की हो जाती है, इसलिए उसको नौ कषाय कहा, यानी कषाय नहीं, नौ कषाय अथवा ईषत कषाय। वह अपना कोई कार्य तभी कर सकता है जब कषाय का सपोर्ट उसके लिए मिलता है। और वह कषाय का सपोर्ट भी कैसे मिलता है? कषाय तो है ही नहीं, कषाय की तीव्रता के साथ ही आपके नौ कषाय काम करेंगे, ये जब कभी भी करेंगे तब। अब तीव्रता के बहुत सारे भेद हो सकते हैं, ये बात अलग है। तो अनंतानुमंदी कषाय अलग वस्तु, अप्रत्याख्यान वस्तु अलग वस्तु, उसके साथ जो भय होते हैं अलग। यद्यपि वह क्षय सम्यक दृष्टि है, लेकिन पूर्ण भय से मुक्त नहीं होता है। निर्जरा अधिकार में सातों आठों अंगों के साथ अमृतचंद जी ने कलशा में सात भयों का ही वर्णन किया। उसको अपने ढंग से आप देखने का प्रयास करो। उन्होंने भय को रखा, इसलिए रखा, भय करने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सत्य भय विप मुक्का जम्मा तम्मा तो निशंका। फिर उनके पास शंका है क्या? आचार्य ने शंका का अर्थ संदेह ही नहीं लिया, निशंक अर्थात निसंदिग्ध का अर्थ निर्भय, ये भी लिया। तो सत्य भय विपमुखो जम्मा तम्मा तो निशंका कहा, सातों भयों से मुक्त हो जाओ। सातों भयों से मुक्त होते हुए भी अनंतानुमंदी भय से मुक्त होना पर्याप्त नहीं, उसके उपरांत भी खूब डरते हैं। भरत चक्रवर्ती को कौन सा डर था बताओ? उनको यह भय था, देखो छोटे भैया के द्वारा बड़े भैया की हार हो गई, लोग क्या कहेंगे, तो ईलोक भय था। लोग क्या कहेंगे, तो लोगों के द्वारा तो भय मिलेगा। जिस व्यक्ति की दृष्टि में लोग है तो भय है, भैया लोग क्या कहेंगे, ऐसे क्या बोल रहे हो, थोड़े होशियारी से बोलो, ऐसे कैसे चल रहे हो आप, शांति से चलो, इधर उधर नहीं देखते, लोग क्या कहेंगे, कहाँ खा रहे हो आप, सोचो रसोई घर में खाते हैं, छोटे बच्चे जैसे नहीं खाते पीते, अच्छा लोग क्या कहेंगे, ठीक दर से बैठ करके खाओ। हे ठीक दर से सामायिक करो, ठीक आसन लगा, लोग आ रहे हैं जा रहे हो क्या, कहां कहां नहीं होता बताओ तो, नहीं तो ठीक बैठो तो ठीक है, नहीं तो ठेठों में अच्छे नहीं आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, देखो ये कैसा बैठा है, हमेशा हमेशा आप लोगों की आलोचना होगी, ठीक बैठो बटन दबने वाला है, नहीं तो आपके पीढ़ी क्या कहेगी, हमारे दादा ऐसे बैठते थे, ऐसे कहेंगे। तो ये सब बातें लोगों को दृष्टि में रख करके हम चलते हैं कि नहीं, व्यवहार जब तक है तब तक यह छूट ही नहीं सकता। कितने भी कर लो, ये एक सभ्यता है, एक अनिवार्य तत्व है, प्रमाद नहीं दिखना चाहिए, ताकि उसका अनुकरण बहुत जल्दी हो जाता है। छोटों को तो फिर भी ठीक है, लेकिन बड़ों को तो ऐसा बैठना चाहिए कि बस ये हमेशा बना रहता। लेकिन जिस समय वो सामायिक में बैठ जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उस समय बैठा हूं इस प्रकार का प्रत्यय ही नहीं रहता, और आत्मा बैठती भी नहीं, आत्मा उठती भी नहीं, आत्मा बोलती भी नहीं, आत्मा और कोई विशेष कार्य नहीं करती। तो शरीर आश्रित होकर के जो कोई भी क्रिया होते हैं सब व्यवहार में आ जाते हैं, और आत्मा की वो क्रिया ऐसे आरोपित हो जाते हैं, और नहीं है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उपयोग के बिना इस शरीर में और अन्य कार्यों में क्रियाएं संपादित हो ही नहीं सकती। बिना बोले बैठा जा सकता है, लेकिन बोलेंगे तो उस समय अवश्य उपयोग को बोलने की ओर डायरेक्शन देना ही होगा। ये क्या ऐसा, इसी का नाम व्यवहार है। योग साध्यम पूज्यपाद ने समाधि शतक में कहीं लिखा कहा है कि जिस समय वह ध्यान में लीन हो जाता है, उस समय किस ढंग से वह भीतर चला जाता है। सर्वप्रथम अपना उपयोग योगों में आ जाता है, मन में, वचन में और काय में आ जाता है, और फिर इसके उपरांत एक कदम आगे बढ़ जाता है। यदि रागादि की उद्रेकता है तो वह इंद्रियों में आ जाता है, इंद्रिय के व्यापार में आ जाता है। यदि मान लो उपयोग में रूप है तो वह आंखों का व्यापार करेगा, यदि उपयोग में रस है तो वह जिह्वा इंद्रिय की ओर डायवर्शन, यदि गंध है तो नाक के द्वारा फुसफुसाएगा, यदि आठ प्रकार के स्पर्शादि का विकल्प है तो वह हाथ पैर मारने लग जाएगा, यदि वह इस स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है तो पांचों इंद्रियां उसके साथ काम करने लग जाती हैं और शरीर में उसका व्यायाम प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कहा कि जिस समय द्रव्य श्रुति केवली होता है वह आत्मानं न संवेदयति, इसीलिए कहा कि जिस समय वह इन विकल्प के साथ रह जाता है, सात तत्वों को तो सात तत्व के रूप में होगा वो, अन्यत्र नहीं। यद्यपि ज्ञान की परिणति उस रूप में हो रही है निश्चित बात है, लेकिन उसका मुख जो है सात तत्वों की ओर है, बहिर्तत्व की ओर है, अनेक व्यापार में लगा हुआ है, इंद्रिय व्यापार में लगा हुआ है, तो उस समय आत्मा का संवेदन नहीं कर सकता। इसलिए उसको व्यवहार श्रुति केवली कहा है, और व्यवहार श्रुति केवली होते हुए आज तक किसी को द्वितीय शुक्ल ध्यान नहीं हुआ। स्वाध्याय करने के लिए कहा, लेकिन निश्चित बात है, लेकिन सामायिक के काल में स्वाध्याय का निषेध क्यों किया? एक चिंत्य है, मननी है विषय ये, क्योंकि स्वाध्याय के साथ बहिर्मुखी उपयोग होता है, प्रवृत्ति होती है, किंतु ध्यान में वह प्रवृत्ति मुख न होकर के निर्वृत्ति परक हो जाती। प्रवृत्ति को जब हम हटाएंगे तो सर्वप्रथम कहां से मांगेंगे? पंचेंद्र के विषयों से अपने उपयोग को डायवर्शन देगी। जो ही हमारा विकल्प उपयोग या स्थिर हो जाता है कि हमें पंचेंद्र विषयों से कोई मतलब नहीं है, तो वह अपने आप ही इंद्रिय विजय हो जाता है, उसको चाहिए नहीं, वो ढेर के बीच में बैठा दो उसको, रस के ढेर में बैठा दो, रूप के पास बिठा दो, चित्रों से सजा हुआ उस कमरे में बिठा दो, कहीं भी कश्मीर भी ले जाओ, तो उसको कश्मीर में आनंद नहीं आएगा। और जिसको कश्मीर नहीं मिलता है वो कश्मीर का चित्र सामने लटका लेता है, और चित्र भी यदि नहीं मिलता है तो क्या करें, क्या करें, तो एक हरा चश्मा लगा दूं, सफेद भी हरा, हरा तो और घना हरा, काला भी हरा, पीला भी हरा, धरती भी हरी, आसमान भी हरी, सारे सारे हरे हरे, क्योंकि कश्मीर में उसका अटका हुआ है मन। जब पंचेंद्रिय विषय ही उसके लिए इष्ट नहीं होते तो अपने आप ही दरवाजा खिड़कियां बंद हो जाते, आंखें खोलो ना, खोल करके क्या करूं बताओ, आज ऐसे क्यों बैठे हो गुमसुम, तो गुमसुम कम तो फिर कैसे बैठे बताओ, उधर क्यों नहीं आ रहे, क्यों आओ बताओ, कारण भी तो बताओ। वह सोचता है कि मैं जैसे चाह रहा हूं उसी प्रकार ये भी चाहता होगा, संकोच न करियो, आपका घर है ठीक है, न आपका है न मेरा है, हमें चाहिए नहीं, आज क्या हो गया, किसने क्या कर दिया इनको, किसने क्या कर दिया इनको, कोई टोटका तो नहीं हुआ, कोई जादू तो नहीं हुआ, किसी ने सम्मोहन तो नहीं किया, किसी ने कोई सदमा तो नहीं पहुंचाया, क्यों पागल तो नहीं बने। तो वह कहता है कि भाई साहब आप ऐसा ना सोचो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो दंग रह जाता है कि कैसी बात करते हो, मैं तो आज तक आपको समझाता आया हूं, थोड़े वैराग्य की बात किया करो, तो आज तुम मुझे समझा रहे हो क्या, नहीं अब नहीं चाहिए मुझे, अब ऐसी स्थिति में उपयोग कहां जाएगा मुझे बताओ, अभी तक कुछ न कुछ तो मांग थी, चाह थी, नहीं रुक पा रहा था, वहां तसल्ली नहीं है तो दूसरी जगह, वहां उसके उपरांत दूसरे, सुबह शाम बेचैन रहता था, अब वह बेचैनी समाप्त। ये क्या है, इसी को बोलते हैं स्थिरता, जिसके उपयोग में रूप रस गंध स्पर्श आदि में कोई सुख नहीं है तो उसकी ओर वह जाएगा नहीं। संस्कार अलग वस्तु है, रस अलग वस्तु है, प्रवृत्ति अलग वस्तु है, कषाय के अनुरूप हमारी प्रवृत्तियां हुआ करती हैं, और कषाय के लिए भीतरी दृष्टि आस्था रुचि काम करती रहती है। वीतरा सम्यक दर्शन होने के उपरांत सात भयों से ऊपर उठ जाता है, पंचेंद्र के विषय तो बहुत पीछे रह गए होते हैं, अब रह गए केवल तीन, मन वचन काय की प्रवृत्ति, उसको भी वह समय पर केंद्रित कर लेता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति इतनी हानिकारक नहीं है जितनी कि अपने इंद्रिय व्यापार, इंद्रिय व्यापार इतनी हानिकारक नहीं है कि जितनी कि इंद्रियों के साथ विषयों में एक प्रकार से लगाव, और इंद्रियों के विषय इतने लगाव नहीं है जितने कि हमारी दृष्टि उसी में सुख है ऐसे मानने की होती है। जिसने संयम को धारण कर लिया, उसको मान लो इंद्रिय व्यापार हो भी जाता है तो वह सारे सारे इंद्रिय व्यापार करते हुए भी इसमें ही सुख है, यही सब कुछ है, ऐसी मान्यता उसके पास नहीं रहती है, इसलिए काम होते ही उसको डायवर्शन मिल जाता है, कुछ आवश्यक है लेकिन उसी के ऊपर डिपेंड हो, उसका विकास चाहे ऐसा नहीं चाहता। शरीर है, पेट है, पेट है तो भूख है, भूख है तो दो तीन रोटी की आवश्यकता, इसके उपरांत आचार्य अखिलंगदेव कहते हैं भोजन करने से पूर्व में क्या था, साधक को पूछा जाता है, ये आकुलता थी, आहार संज्ञा हो गई उसी के कारण, और लेने के उपरांत क्या हुआ, अब ध्यान करना अपने को, अब तो संतुष्ट हो गया, अब तो ध्यान करना अपने को, तो ये एक अनिवार्य व्यापार हो गया। कुछ समय तक तो हम इसको निकाल सकते हैं, फिर इसके उपरांत नहीं निकल सकता। तीर्थंकर भी उठे, क्यों उठे? आप सोचो, विचार करो, कहां वज्र से नारायण संगन और कहां तीर्थंकर, तो निश्चित रूप से बंद भी हो रहा है अभी और उदीर्ण होने वाली है उसी जीवन में, और फिर भी आहार के लिए उठते हैं, उठे हैं। और तीर्थंकर दो नियम से उठते हैं, बाहुबली के लिए कोई एक्सेप्शन है, उठ भी सकते और नहीं भी उठ सकते। क्या परिणति होती होगी? तो यही है कि काय का व्यापार होगा, इंद्रिय का व्यापार होगा, इस व्यापार के द्वारा वह आहार संज्ञा उपशमित होगी और अपने ज्ञान का व्यापार चल रहा है। तो इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी के व्यापार में कथनचित साम्य जैसा ही नजर आता है, लेकिन दृष्टिकोण में बहुत अंतर रहता है। यही दृष्टिकोण अपने को बनाना चाहिए। तो व्यवहार कहने से समझाने की बात आती है, तो उन्होंने भी समझाया, वृषभनाथ ने भी अपने मन को समझाया, तेरे विकल्प है उठ जा। तो वह मन बिल्कुल ही पृथक है, ऐसा नहीं है, उठो। लेकिन शेष जो महाराज थे वो बीच में ही उठ करके वहीं के आम तोड़ताड़ करके खा लिया बताते। वृषभनाथ भी उसी मुहूर्त में दीक्षित हुए थे, वहीं के आम खा लेते, वहीं पहले गन्ना फन्ना होगा, जंगल में तो रहते ही थे, उसी भी से एक गन्ना खोद लिया और तोड़ताड़ करके खा लिया, वहीं पर बैठ गए। वहां आखिर सुनो, बात ऐसी है कि दूसरे को तकलीफ क्यों करो, पराश्रित क्यों हो? श्रीराम श्रेयांश राजा को ढूंढने एक वर्ष में ढूंढने की अपेक्षा वहीं के वहीं कर लेते, आहार का विकल्प तो था ना, आहार का ही विकल्प था ना, आहार संज्ञा थी और इसमें कोई बाधा ही नहीं है। 28 मूल गुणों में एक गुण है खड़े खड़े खा लेते, उसमें क्या बात, बैठे बैठे नहीं खा लेते। नौदा भक्ति, अच्छा नौदा भक्ति करवा दो और भोजन मत ले आओ, आ जाओ। तो आज जल शुद्ध इतने कह रहे, इतनी तो भूख थी, सुन ली, पूजन की भूख थी, पूजन हो गई, उच्च सिंहासन बिठा दो, बिठा दिया, पड़गा लेता पड़गा लिया तो उनके कहने के अनुसार हम कह रहे हैं कि साधु तो है नवदा भक्ति को भूख रखता, तो नवदा भक्ति हो गई। नहीं उसे उनके तो उसने 300 बार बोलवा लो, वो कह रहा है वो भक्ति करवा दो हो गए, पूजन करवा दो हो गए, अर्घ चढ़ गया हो गया। हाँ देखो, ध्यान रखना, उनकी तो नहीं है लेकिन हम लोगों की बात है। अच्छी जो है लंबी चौड़ी पूजन करने लग जाएं और कुछ सर्दी की हवा चल रही हो उस समय देख लो क्या होता, नवदा भक्ति होती कि लंबी चौड़ी तो है जय माला के साथ करने लग जाए, ये भी देखो है अति व्यक्ति कहां कर रहे हैं, पूर्ण भक्ति कर रहे हो। अभी तक जो है कोई मुनि महाराज नहीं आते थे, मुनि महाराज बहुत सौभाग्य से मिल गए, इसलिए हम पूरी पूजन करेंगे, विधान ही कर लो पूजन क्यों 64 रिद्धि विधान कर लो तो ऐसा नहीं। तो ये एक वस्तु स्थिति है कि इतने आप अतिरेक को सहन नहीं कर पाओगे, उठ जाएंगे वहां से। जय माला यदि मान लो लंबी कर दे तो व्यवहारो अभूतार्थ है और निश्चयो भूतार्थ है। एवं भूत जिस समय होता उस समय किसी प्रकार के भय नहीं, भीति नहीं, व्यवहार नहीं, आश्रय नहीं और विकल्प नहीं। ये विकल्प के कारण क्या है ये ध्यान में रहना चाहिए। ये भूख मिटाने का विकल्प तो सही है, आवश्यक है, मानते हैं, लेकिन रस का विकल्प हमें समझ में नहीं आता। जो ही रस का विकल्प मिट गया, भूख का विकल्प बहुत जल्दी मिट जाएगा। अकलंग देव ये कहते हैं, देखो भूखों को मिटाने के लिए आप चले गए उनके वहां, मिट गया, आधा घंटा भी नहीं लगा, भूख मिट गया। लेकिन रस यदि आ गया, विकल्प में रस आ गया, तो फिर पेट भरने के उपरांत भी रस का विकल्प बहुत बड़ा होता है। अब रस के लिए तो सब ये सब दृश्य जितने भी लग रहे हैं सब रस के लिए। गृहस्थ आहार दे करके लेता है, नहीं समझे, लेकिन रस रहित तो नहीं ले सकता है? भले एक घंटा और लग जाए कोई वादा नहीं, हाँ से कोई मतलब नहीं, जब बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए। रस रहित के हम तो महाराज थोड़े ही हैं, हाँ? उनके लिए तप है, हमारे लिए तप थोड़े ही है, हमारे तो शरीर में काम करना है, धमदार काम करना है, हाँ तपा के देव रस है। तो ये रस, अब ये रस की कितनी सीमा, कितना संग्रह, यहां पर आ गया दृष्टि भेद। यहां रस भेद नहीं, अब दृष्टि भेद। जीवन पर्यंत के लिए करो, अपने परंपरा में सारे पीढ़ी दर पीढ़ी तक इसका प्रबंध होना चाहिए। तो ये बड़ा भूत और खड़ा हो गया, ये एवं भूत नहीं, ये बड़ा भूत खड़ा हो गया। अब वह नाती और क्या क्या, दादा परदादा सर दादा, हाँ वो तो होता चला जाता है, कोई मात्रा नहीं, चलते जा रहे चलते जा, संग्रह 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 होता चला जा रहा, वो भी मेरा वो भी मेरा वो भी मेरा। तो कहते हैं बहुआरंभ परिग्रहत्व नारकशायेश, रस तक तो आप सीमित थे ठीक है, लेकिन रस के बाद संग्रह और आ गया और बहुत संग्रह हो गया। तो आचार्य कहते हैं कि अब तो आप पहुंच गए, बहुत दूर पहुंच गए, आपको अब हटाए नहीं जा सकेगा उससे। तो एवं भूत तक आने के लिए पहले मिथ्या दृष्टि भी छूट गई, लोभ लालच तीव्रता भी छूट गई, रस भी छूट गया, फिर इसके उपरांत भोजन भी छूट गया, और भोजन छूटने के उपरांत अब शरीर को स्थिर कर दो, एकत्व आ गया, एवं भूत आ गया। अब शरीर की अपेक्षा से था, मन की अपेक्षा से था, वो सारे सारे विकल्प दूर हो, कोई बाधा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, घंटी बज भी जाए तो आपके लिए कोई है नहीं। वो जिसने उपवास का संकल्प लिया है उसके लिए शाम की घंटी, मध्याह्न की रियापत की घंटे, सुबह की घंटे, स्वाध्याय की घंटे, बीच में यदि 9:30 बजे 10 बजे बस जाते हैं, वो घंटी के लिए और उनके कान जाते ही नहीं, क्योंकि पहले ही दिन संकल्प ले लिया है। कैसे देखो उपयोग की विचित्रता है ये, अपने जैसा उद्देश्य हो तहा निर्देश, जैसा हमारा उद्देश्य रहता है उपयोग में उसी के अनुसार होता है। इसलिए वही सम्यक दृष्टि जो निश्चय सम्यक दृष्टि होता है, जो सातों प्रकार के भयों से मुक्त हुआ करता है, अभूतार्थ है व्यवहार नहीं है, असत्यार्थ है इत्यर्थ है। असत्य का अर्थ, असत्य का अर्थ पहले कहा कि निश्चय के अभाव में असत्य कहा जाता है। असत्य का अर्थ दूसरे का सहारा लेना होता है, उसके द्वारा कभी भी हमारे लिए मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन उसमें कुछ सम्यक दर्शन नहीं होता ऐसा नहीं। इसलिए भर्तादिनाम यत् सम्यक दर्शनम तत्तु व्यवहार सम्यक दर्शनम, यत्तु व्यवहार सम्यक दर्शनम तत्तु सराग सम्यक दर्शनम एव, ऐसा कहा। वही चक्रवर्ती जब ध्यान में बैठेंगे तो वह निश्चय सम्यक दर्शन।
हाँ इतना अवश्य है, टीकादि ग्रंथों में उन्होंने कहा कि किसी विवक्षा में उनका भी निश्चय सम्यक दर्शन है। ये कैसी बात है? तो उन्होंने ये खोला है कि जो वीतराग चारित्र के साथ अविना भाव रखने वाला निश्चय सम्यक दर्शन है उसका यह परंपरा है साधनत्वात इदम अपि निश्चय सम्यक दर्शन का, परंपरा से इसका वह कारण है। इस सपेक्षा से इसको हम कह रहे तो कोई बाधा नहीं। ऐसे आगम में अध्यात्म के रहस्य खोले गए हैं। भूतार्थ है, सत्यार्थ है, देशित है, कथित है, कहा गया है शुद्ध नहीं हो, ये भूतार्थ ही यहां पर शुद्ध नहीं है, निश्चय नया है। तरी केन नहीं सम्यक दृष्टि होती थी, कौन से नहीं की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि होता? भूतार्थम सत्यार्थम निश्चय नियम आश्रित आश्रित गत स्थित है। जो निश्चय ने का आश्रय लेता है उसमें स्थिरता पा जाता है, वही सम्यक दृष्टि होता। खलु स्फुटम हवदि सम्यक दृष्टि होती जीव इति टीका व्याख्यान द्वितीय व्याख्यान पुनः दूसरे व्याख्यान से। अब देखो ये दूसरा इसमें देशेन स्वामी ने व्यवहारो भूयत्तु इसके दो अर्थ निकाले हैं। व्यवहारो अभूतार्थ है, व्यवहार है अभूतार्थ है, भूदत्तो भूतार्थस्य देश तो देशित कथित है, न केवलम व्यवहारो देशित है, नहीं केवल व्यवहारी कथित है किंतु शुद्ध निश्चय ने भी कहा गया। शुद्ध निश्चय ने उपी दू मिने शब्दात अयम शुद्ध निश्चय ने अपि व्याख्यानेन भूतार्थ अभूतार्थ भेदेन व्यवहारोपी द्विधाः। शुद्ध निश्चय ने भी दो प्रकार का, व्यवहार ने भी दो प्रकार का, व्यवहार ने भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी है, निश्चय ने भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी है, क्योंकि निश्चय के साथ अशुद्ध निश्चय ने भी होता है। शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने व्यवहार भी दो प्रकार कैसे, एक तो औपचारिक व्यवहार और एक व्यवहार जो शुद्ध निश्चय ने के लिए कारणभूत व्यवहार वह भूतार्थ है। एक प्रकरण में आप पढ़ेंगे कि प्रतिक्रमण परिसरण आदि आदि विषकुंभ है, वहीं पर अमृतचंद जी सूरी ने प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ भी कहा है। ये अनेकांत का मर्म किस ढंग से उन्होंने अध्यात्म में बहुत स्पष्ट कर दिया। एक धारणा बन जाती है कि प्रतिक्रमण करने से ही विषकुंभ, लेकिन अमृतचंद जी कहते हैं ये अमृत कुंभ है। ये कैसे अमृत कुंभ? ये इसलिए अमृत कुंभ है, इस प्रतिक्रमण करने के उपरांत ही निश्चय सामायिक में डूबने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और इस प्रतिक्रमण को जो नहीं करता उसका शल्य बना रहता है। प्रतिक्रमण दोष को दूर करने का एक साधन होता है, और दोष दूर किए बिना हम निर्विकल्प समाधि में डूब नहीं खा सकते। जैसे किसी किसी को आदत रहती है श्रावक के पेशा से भोजन करना है, तो जब तक स्नान नहीं करेंगे भोजन किया नहीं जाएगा। स्नान किए बिना यदि भोजन के लिए बिठा दे, भैया हमें भोजन की इच्छा नहीं हो रही है, और जब बुखार वगैरह आ जाता तो उस समय भोजन थोड़ी होता, थोड़े बहुत खा करके उठना होता। तो इसलिए मन संतुष्ट नहीं होता, मन प्रशस्त नहीं होता। जिस प्रकार आप भोजन से पूर्व में स्नान अनिवार्य मानते हैं, उसी प्रकार निर्विकल्प समाधि में डूबने से पूर्व में प्रतिक्रमण अनिवार्य हो जाता है। इसलिए उसको अमृतचंद सूरी ने अमृत कुंभ कहा। लेकिन यदि आप निर्विकल्प समाधि से पूर्व में प्रतिक्रम तो कर लिया लेकिन सामायिक में नहीं बैठते हैं, तो उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। कभी कभी किसी को जो स्नान करवा दो तो स्नान करने से पूर्व में कहता है, फिर मैं बैठूंगा नहीं, स्नान करने के उपरांत तो मुझे पहले भोजन की थाली चाहिए। इसी प्रकार नहीं हो, नहीं झूठ है, हाँ सही तो सही बात तो कहूं तो कहो नहीं बिल्कुल पहले कह देते हैं, देखो मैं स्नान नहीं करूंगा पहले, यदि स्नान करूंगा तो पहले तैयार रहिए। उसी प्रकार मुनि महाराज वो होते हैं कि प्रतिक्रमण क्रियाएं नहीं, अब कोई विकल्प नहीं, हम निकल, हल्का हो जाता है और प्रायश्चित प्रतिक्रमण इत्यादि जो है एक बहुत संशोधन करने के साधन माने जाते हैं। मन प्रशस्त हो जाता है कि हमारा भार उतर गया, हमारा मल दूर हो गया, हम संतुष्ट हो गए, हमने प्रतिक्रम कर लिया, पश्चाताप कर लिया, और ये कुछ होता है। और जो अभूतार्थ होता है वह एक प्रकार से पराश्रित जैसा रहता है, एकांत रूप से पराश्रित रहता ऐसा नहीं, किंतु एकांत रूप से जो भूतार्थ है उसका साधक भूत भी एक भूतार्थ व्यवहार हुआ करता है। व्यवहार की और निश्चय की इन दोनों प्रणालियों को आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए। एक उदाहरण दे देता हूं, नवनीत है, किससे प्राप्त होता है, मंथन करने से प्राप्त होता है। किसके मंथन करने से प्राप्त होता है, तो दही के मंथन करने से प्राप्त होता है। तो दही को कहाँ रखा जाए, हाथ में रखा जाए और मथाने से करते जाए, नहीं। तो व्यवहार एक ऐसा व्यवहार है कि एक औपचारिक व्यवहार भी होता है, तो वहां एक पात्र में दही को रखा जाए तो पात्र भी व्यवहार हुआ और दही भी व्यवहार हुआ। दही निश्चय नहीं है, निश्चय तो नवनीत है। अब नवनीत का कारण कौन, मंथन, मथता कौन, दही, किसमें मत्ता, यह गौण हो जाता है। लेकिन जब तक भोगनी नहीं है या और कोई अच्छा पात्र नहीं, तब तक मथने के लिए उस पात्र को भी हम देख लेते हैं, यह भी व्यवहार। तो मथानी भी, रस्सी भी और भोगनी भी, पात्र भी, यह सारा का सारा व्यवहार हो गया। यह औपचारिक व्यवहार है, बाजार से सीधे लाए जा सकते हैं, लेकिन इनमें नवनीत नहीं रहता है, इनके बिना नवनीत प्राप्त भी नहीं होता, इसलिए भी एक व्यवहार है। और इस व्यवहार के साथ दही रूप व्यवहार मुख्य है, जो भूतार्थ व्यवहार है, व्यवहार है निश्चय नहीं है, लेकिन वो भूतार्थ व्यवहार है, क्योंकि यही जाकर के नवनीत बनने वाला। तो नवनीत क्या है, तो नवनीत तो निश्चय है। तो इस ढंग से अपने को कि कौन से पदार्थ किस रूप में स्वीकृत है ये देखने की आवश्यकता है। जब दही और यह समस्त रूप में भुगोनी वगैरह रखी गई है तो फिर भुगोनी की ओर नहीं देखते, भुगोनी में देखते हैं। रस्सी की ओर नहीं देखते, भुगनी में देखते हैं। भुगनी में भी क्या देखते हैं, मथानी को देखते हैं। मथानी के ऊपर भी क्या देखते हैं, कण चिपक रहे हैं क्या नहीं ये देखते हैं। ऊपर ऊपर आ रहे हैं क्या नहीं कण ये देखते हैं। मथाने वालों को आप देख लो, बार बार झांकते रहते, क्या झांकते हैं, तो कहीं दही भाग रहा है क्या। दही भागता है नहीं, किंतु वह घूमता रहता है। उस मंथन के कारण उनमें से अपने आप ही कण, नवनीत के कण एकत्र, ऐसे नहीं गोला बनता, पहले गोला तो बनाया जाता है, बाद में वो हाथ के शेप देने से ऐसा होता नहीं, तो वो फट फट करके उसमें से एक एक कण निकलते रहते हैं। चने के दाल के बराबर, तूरी के दाल के बराबर निकलते रहते हैं, जिस प्रकार क्वालिटी का वह होगा उस प्रकार, फिर उसको निकाल करके यूं करके फिर शेप दिया जाता है तो गेंद का रूप धारण कर लेता है। ये किसमें से निकला? ये दही में से निकला। तो दही व्यवहार था, इसलिए उसको भी भूतार्थ कहेंगे। व्यवहार है, इसमें क्या रखा है? जो आप चाहते हैं वही रख, जो आप चाहते हैं वही रखा है। यदि है तो निकाल करके बताओ ना, ऐसे नहीं निकाल करके बताएंगे। एक भुगोनी ले आओ, रस्सी ले आओ, रस्सी को किसी बांधना चाहो क्या? हाँ बांधना चाहेंगे। किसको बांधना? हम लाओ ना, जैसा हम कहते हैं उसके अनुसार कर रहो। फिर इसके ऊपर मथानी ले आओ, मथानी लिया, मथानी लिया, एक खंभा गाड़ दो पहले, एक खंभा गाड़ दिया, फिर उसमें सामने रखो ये भुगोनी, उस भुगोनी में दही डाल दो, फिर उसमें उसके सामने रस्सी बांध दो और उसमें बीच में मथानी उसमें डुबो दो, फिर इसके उपरांत एक हाथ से रस्सी खींचो और दूसरे हाथ को भी नहीं खींचो, दूसरे हाथ को ढीले छोड़ दो। फिर कब तक ये लेफ्ट हैंड राइट, लेफ्ट हैंड राइट, ये कब तक चलेगा? देखते रहो, जब तक आते नहीं तब तक। ये व्यवहार सद्भूत व्यवहार, इस व्यवहार की जो आलोचना करता है हमें समझ में नहीं आता है, उनको सही पूछा जाए निश्चय का ज्ञान ही नहीं। और जिसको निश्चय का ज्ञान नहीं उसको अभी निर्णय ही नहीं है। इतना अवश्य है कि मथो को तो 10 बज गया मत्थर है, ऐसा नवनीत उठ करके भाग करके ऊपर थोड़े ही आएगा, फिर कब आएगा देखना पड़ेगा। जैसे मथे हैं वैसे देखना भी पड़ता है। तो ज्ञाता दृष्टापन देखो, विश्वास के साथ देखो, और जो ही कण देखे अब सब छोड़ दो, मथानी भी निकाल दो, रस्सी भी बांध दो, और भुगोनी छोड़ो नहीं, अभी भुगोनी उसमें निकाल लो नवनीत, फिर इसके उपरांत रख लो। तो तक्र है, उससे कोई मतलब नहीं है, वह व्यवहार नहीं है। तक्र अपने लिए कोई आवश्यक नहीं था। अब यह सद्भूत व्यवहार माना जाता जो निश्चय का साक्षात कारण हुआ करता है। इसलिए भेद रत्नत्रय सद्भूत व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय वह भूतार्थ निश्चय माना जाता है, जो इसके बिना वह हो नहीं सकता। कुछ लोग समझते हैं कि रस्सी में है, कोई पानी में है, कि भुगोनी में है, मथानी में है, मथानी में नहीं है। ये बाहरी उपकरण माने जाते हैं, यह करण नहीं माने जाते, करण नहीं माने जाते, ये उपकरण माने जाते हैं। तो करण में उपकरण की आवश्यकता है और उपकरण के द्वारा करण में ऐसी क्रिया हो जाती है जिसके द्वारा हमारे सामने एक ऐसा कार्य सामने आकर के हो जाता है जिससे हम तृप्त हो जाते हैं। जिसमें जयसेन स्वामी ने यही बात कही है कि शुद्धश्च शुद्धा शुद्ध निश्चय भेदेन निश्चय नहीं उपी द्विधा इति नये चतुष्टयम्। इस प्रकार नयों का यह चतुष्टय माना गया। इदम अत्र तात्पर्यम्, इस सारा का सारा क्या मतलब हुआ सिद्ध तो बताते हैं। कह अपि ग्राम्य जन है सकर्दमम नीरम पिबति, कोई ग्रामीण गंवार है और वह कादा वाला पानी पी लेता है, जैसे करदम है जिसमें कीचड़ जैसा है पी लेता है। नागरिकस्तु, कोई सिविलाइज्ड मैन जो सभ्य है, सुसंस्कारित है, वैज्ञानिक है, तो नागरिक कैसा होता? पुनः विवेकी, वह विवेक रखता जन है। कतक फलम निक्षिप्य निर्मलोदकम पिबते, और उसमें जो जल में कुछ कादा है उसमें वह निर्मली डाल देता है, कतक का फल डाल देता है, रीठा वगैरह डाल देता है। डालने के उपरांत वो नीचे नीचे कीचड़ बैठ जाता है, ऊपर के पानी को पी लेता है। यह सब भी माना जाता है। उसी प्रकार तथा स्वसंवेदन रूप भेद भावना शून्य जन, स्वसंवेदन रूप भेद भावना से जो रहित होते हैं, मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम सहितम आत्मानम अनुभवति। आत्मा का अनुभव तो सबको होता है कि मिथ्यात्व भी है, राग भी है, द्वेष भी है, पक्षपात भी है, दुनिया के सारी सारी दिमाग में बात है, पर आत्मा का अनुभव करता है, होता है। आत्मा का अनुभव किसको नहीं होता? सदृष्टि जन, किंतु सदृष्टि जनों क्या होते हैं? पुनः देखो, सम्यक दृष्टि, आत्मा का अनुभव किसको नहीं होता? सदृष्टि जन, किंतु सदृष्टि जनों क्या होते हैं? पुनः देखो, सम्यक दृष्टि है तो अभेद रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय कहां से आएगा? सम्यक अभेद सम्यक दृष्टि के पास आ ही नहीं सकता, लेकिन सम्यक दृष्टि तो है ना यहां पर, जो सम्यक दृष्टि, इसीलिए कहा जाता है कि यह वह सम्यक दृष्टि है जो वीतराग सम्यक दृष्टि है, यह वह सम्यक दृष्टि है जो आठ आठ अपने सात प्रकार के भयों से मुक्त है, यह वह सम्यक दृष्टि है मद से मुक्त है। मद किसको बोलते हैं? जिस प्रकार नौ नौ कषाय की बात है उसी प्रकार मद की भी बात है। अनंतानुमंदी मद अलग है, अप्रत्याख्यान मद अलग है, प्रत्याख्यान मद अलग है, संजन का भी कुछ होता होगा, होता है, रिद्धि गारव सात गारव रस गारव आदि जो होते हैं ये भी मद होते हैं, लेकिन इस प्रकार के खतरनाक मद नहीं होते हैं। लेकिन नहीं होते हैं ऐसा नहीं, कुछ मादकता इतनी रखते हैं कि उसको लेते ही बस वह झूमने लग जाएगा, स्व को भी भूल जाएगा और पर को भी भूल जाएगा। कुछ ऐसे मद होते हैं जो धर्म कर्म रखते हुए भी कुछ न कुछ करते रहते हैं। अब वह ख्याति पूजा लाभ नहीं मिलने से किसके जीवन में किस ढंग की विक्रिया होती है हम नहीं कह सकते हैं, अरंत भगवान कह सकते हैं कि कितने प्रकार की वह बातें रहती हैं, नहीं रहती ऐसी बात नहीं। हाँ, थोड़ी सी भी मान लो अपने परिवार की बात कुछ कह दें तो आलोचनात्मक नहीं प्रशंसात्मक, तो अभी अभी मरणासन्न भी हो दादाजी फूल जाएंगे। हाँ, ऐसा सुना? हाँ, अच्छा, किसने सुना? एक बार सुनाओ और तो एक बार और सुना दो। ऐसा सुना? हाँ, अच्छा, किसने सुना? एक बार सुनाओ और तो एक बार और सुना दो। दूसरे से भी और सुन लेता, उनसे भी वो सुन लेता कि हाँ हमारे बाजार में, हमारे जो मार्केट में नाम हो गया, हाँ बाजार में नाम हो गया, ये हमारे जीवन में नहीं हो पाए, लड़का बहुत होशियार है हमारा, कहना पड़ेगा, अकेला अकेले बोलता रहता है, सामने तो नहीं बोलता है लेकिन ये कहना तो पड़ेगा, बेटा अच्छा निकला, बाप का नाम कर दिया। सामने कैसे कहेगा? तो फिर वो और ज्यादा चढ़ जाएगा, इसलिए नहीं कहता, लेकिन वह भीतर भीतर गुदगुदापन तो रहता है। ये सब किया क्या है? आत्मा का स्वभाव है क्या? स्वभाव नहीं होते भी लहर कहां से आती है महाराज? आपको कुछ मालूम नहीं, इसका अलग है, इसका तासीर ही अलग है, होता है। अब भूमिका के अनुसार होना भी चाहिए, होना भी चाहिए का मतलब विदेह नहीं, वो क्षम्य है, लेकिन अब पूरा का पूरा ऊपर उठ गया, उसी प्रत्यय को लगा दो वो तो ठीक नहीं, तो महाराज ऐसे ऊपर उठ जाते। सदृष्टि जना इतने से को अर्थ अभेद रत्नत्रय लक्षण निर्विकल्प समाधि बलेन, अभेद रत्नत्रय रूप निर्विकल्प जो समाधि है उस बल से कतक फल स्थानीयम निश्चय नयम। अब देखो, निर्विकल्प समाधि के साथ जो निश्चय नय है उसको कतक फल, मैंने संशोध निर्मली फल डाल करके आश्रित्य शुद्धात्मानम अनुभवती इत्यर्थ। शुद्धात्मा का अनुभव वह करता है, वह सदृष्टि माना जाता। रत्नत्रय लेकर के बैठा, द्रव्य श्रुत केवली हुआ, लेकिन आत्मा का संवेदन नहीं करता, ऐसा पहले कह करके आए, इसलिए उस समय भेद रत्नत्रय है।